ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यम गीता एक। यम गीता नाम से पुराण वाग्मय में कई गीताएं मिलती हैं। श्री विष्णु पुराण के अंतर्गत समाहित यम गीता उन्हीं में से एक है। यम के दूत किन मनुष्यों से सदैव दूर ही रहते हैं, यही इस लघु कलेवर वाली गीता में स्वयं यमराज द्वारा अपने दूतों को बताया गया है। सच्चे भक्तनों के लक्षण बताने के उपक्रम में जो सदाचार विषयक चर्चा इसमें की गई है, वह अत्यंत प्रभावी होने के साथ भगवान के किसी भी स्वरूप के उपासक के लिए सहज ग्राह्य हो सकती है। वस्तुतः एक सनातन ब्रह्म ही विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त है, अतएव विष्णु भक्त पद से भक्त मात्र का तात्पर्य लेना चाहिए। सरल सुबोध परंतु मार्मिक भाषा शैली में निबद्ध कल्याणकारी इस यम गीता को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। श्री मैत्रेय उवाच। यथावत् कथितं सर्वं यत् पृष्टो असि मया गुरो श्रोतुमिच्छाम्यहं त्वेकं तद् भवान् प्रब्रवीतु मे। श्री मैत्रेय जी बोले, हे गुरु, मैंने जो कुछ पूछा था वह सब आपने यथावत वर्णन किया। अब मैं एक बात और सुनना चाहता हूँ, वह आप मुझसे कहिए। सप्तद्वीपानि पाताल विदयश्च महामुने सप्तलोकाश्च ये अंतस्ताः ब्रह्मांडस्यास्य सर्वतः स्थूलैः सूक्ष्मैस्तथा सूक्ष्मसूक्ष्मात् सूक्ष्मतरैस्तथा स्थूलात् स्थूलतरैश्चैव सर्वप्राणिभिरावृतम्। हे महामुने, सातों द्वीप, सातों पाताल और सातों लोक, ये सभी स्थान जो इस ब्रह्मांड के अंतर्गत हैं, स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्म अति सूक्ष्म तथा स्थूल और स्थूलतर जीवों से भरे हुए हैं। अंगुल्यसाष्ट भागोऽपि न सो अस्ति मुनिसत्तम न संति प्राणिनो यत्र कर्म बंधन बंधनाः। हे मुनि सत्तम, एक अंगुल का आठवां भाग भी कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ कर्म बंधन से बंधे हुए जीव न रहते हों। सर्वे चैते वशम यान्ति यमस्य भगवन किल आयुषो अन्ते तथा यान्ति यातनास्तत् प्रचोदिताः। किंतु हे भगवन, आयु के समाप्त होने पर ये सभी यमराज के वशीभूत हो जाते हैं और उन्हीं के आदेशानुसार नरक आदि नाना प्रकार की यातनाएं भोगते हैं। यातनाभ्यः परिभ्रष्टा देवाद्यास्वथ योनिषु जन्तवः परिवर्तन्ते शास्त्राणामेष निर्णयः। तदनंतर पाप भोग के समाप्त होने पर वे देव आदि योनियों में घूमते रहते हैं। सकल शास्त्रों का ऐसा ही मत है। सो हम इच्छामि तत्स्रोतुं यमस्य वशवर्तिनः न भवन्ति नरा येन तत्कर्म कथयस्व मे। अतः आप मुझसे वह कर्म बताइए जिसे करने से मनुष्य यमराज के वशीभूत नहीं होता। मैं आपसे यही सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर उवाच। अयमेव मुने प्रश्नो नकुलेन महात्मना पृष्टः पितामह प्राह भीष्मो यच्छृणुष्व मे। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, यही प्रश्न महात्मा नकुल ने पितामह भीष्म से पूछा था। उसके उत्तर में उन्होंने जो कुछ कहा था वह सुनो। भीष्म उवाच। पुरा ममागतो वत्स सखा कालिंगको द्विजः स मामुवाच पृष्टो वै मया जाति स्मरो मुनिः तेनाख्यातमिदं सर्वमित्थं चैतद् भविष्यति तथा च तद्भूद्वत्स यथोक्तं तेन धीमता। भीष्म जी ने कहा, हे वत्स, पूर्व काल में मेरे पास एक कलिंग देशीय ब्राह्मण मित्र आया और मुझसे बोला। मेरे पूछने पर एक जातिस्मर मुनि ने बतलाया था कि ये सब बातें अमुक अमुक प्रकार ही होंगी। हे वत्स, उस बुद्धिमान ने जो जो बातें जिस जिस प्रकार होने को कही थीं, वे सब ज्यों की त्यों हुई। स पृष्टश्च मया भूयः श्रद्धद्धानेन वै द्विजः यद्यदाहन तद्दृष्ट मन्यथा हि मया क्वचित। इस प्रकार उसमें श्रद्धा हो जाने से मैंने उससे फिर कुछ और भी प्रश्न किए और उनके उत्तर में उस द्विज श्रेष्ठ ने जो जो बातें बतलाईं उनके विपरीत मैंने कभी कुछ नहीं देखा। एकदा तु मया पृष्टमेतद्यद् भवतोदितं प्राह कालिंगको विप्रस्स स्मृत्वा तस्य मुनिर्वचः जातिस्मरेण कथितो रहस्यस्य परमो मम यम किंकर योर्यो अभूत संवादस्तम ब्रवीमि ते। एक दिन जो बात तुम मुझसे पूछते हो वही मैंने उस कालिंग ब्राह्मण से पूछी। उस समय उसने उस मुनि के वचनों को याद करके कहा कि उस जातिस्मर ब्राह्मण ने यम और उनके दूतों के बीच में जो संवाद हुआ था वह अति गूढ़ रहस्य मुझे सुनाया था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। कालिंग उवाच, स्वपुरुषं विभीक्ष्य पाशहस्तं वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर मधुसूदन प्रपन्नाम प्रभु रहमन्य नृणाम वैष्णवानाम। कालिंग बोला, अपने अनुचर को हाथ में पाश लिए देखकर यमराज ने उसके कान में कहा, भगवान मधुसूदन के शरणागत व्यक्तियों को छोड़ देना, क्योंकि मैं जो विष्णु भक्त नहीं है ऐसे अन्य पुरुषों का ही स्वामी हूँ। अह मम रव रार्चितेन धात्रा यम इति लोकहिताहिते नियुक्तः हरि गुरु वशगो अस्मी न स्वतंत्र प्रभवति संयमने ममापि विष्णु है। देव पूज्य विधाता ने मुझे यम नाम से लोकों के पाप पुण्य का विचार करने के लिए नियुक्त किया है। मैं अपने गुरु श्री हरि के वशीभूत हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। भगवान विष्णु मेरा भी नियंत्रण करने में समर्थ हैं। कटक मुकुट कर्णिकादि भेदैः कनकम भेदम पीष्यते यथैकम सुर पशु मनुजाधि कल्पनाभिर हरि रखिलाभिरु दीर्यते तथैकः। जिस प्रकार सुवर्ण भेद रहित और एक होकर भी कटक मुकुट तथा कर्णिका आदि के भेद से नाना रूप प्रतीत होता है, उसी प्रकार एक ही हरि का देवता मनुष्य और पशु आदि नाना विध कल्पनाओं से निर्देश किया जाता है। क्षिति तल परमाण वो अनिलांते पुनरुपयांति यथैकताम धरित्र्या सुर पशुम नु जादयस तथान्ते गुण कलुषेण सनातनेन तेन। जिस प्रकार वायु के शांत होने पर उसमें उड़ते हुए परमाणु पृथ्वी से मिलकर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार गुण क्षोभ से उत्पन्न हुए समस्त देवता मनुष्य और पशु आदि उसका अंत हो जाने पर उस सनातन परमात्मा में लीन हो जाते हैं। हरि ममर वरार्चितांघ्रि पद्मम प्रणमति यह परमार्थतो हि मर्त्यः तमप गत समस्त पाप बंधम व्रज परिहृत्य यथाग्नि माज्य सिक्तम। जो भगवान के सुरवर वंदित चरण कमलों की परमार्थ बुद्धि से वंदना करता है घृत आहुति से प्रज्वलित अग्नि के समान समस्त पाप बंधन से मुक्त हुए उस पुरुष को तुम दूर ही से छोड़कर निकल जाना। इति यम वचनम निशम्य पाशी यम पुरुषस्तमुवाच धर्मराजम कथय मम विभो समस्त धातुर्भवति हरेह खलु यादृशो अस्य भक्तः। यमराज के ऐसे वचन सुनकर पाशहस्त यमदूत ने उनसे पूछा, प्रभु सबके विधाता भगवान हरि का भक्त कैसा होता है यह आप मुझसे कहिए। यम उवाच, न चलति निज वर्ण धर्मतो यह सममतिरात्म सुहृद्वि पक्ष पक्षे न हरति न च हयन्ति किंचिदुच्चैः सित मनसं तमेवेहि विष्णु भक्तम्। यमराज बोले, जो पुरुष अपने वर्ण धर्म से विचलित नहीं होता अपने सुहृद और विपक्षियों के प्रति समान भाव रखता है, बलपूर्वक किसी का द्रव्य हरण नहीं करता और न किसी जीव की हिंसा ही करता है, उस निर्मल चित्त व्यक्ति को भगवान विष्णु का भक्त मानो। कल कलुष मलेन यस्य नात्मा विमल मतेर मलिनी कृतस्तमे मनमेनम मनसी कृत जनार्दनम मनुष्यम सततम वेहि हरे रतिव भक्तम। जिस निर्मल मति का चित्त कली कलमश रूप मल से मलिन नहीं हुआ और जिसने अपने हृदय में सर्वदा श्री जनार्दन को बसाया हुआ है, उस मनुष्य को भगवान का अतीव भक्त समझो। कनकमपि रहस्य वेक्ष बुद्धया तृणमिव यह समवैति वै परस्वं भवति च भगवन् भगवत्य नन्यचेताः पुरुषवरं तम वेहि विष्णु भक्तम्। जो एकांत में पड़े हुए दूसरे के सोने को देखकर भी उसे अपनी बुद्धि द्वारा तृण के समान समझता है और निरंतर भगवान का अनन्य भाव से चिंतन करता है, उस नरश्रेष्ठ को विष्णु का भक्त जानो। स्फटिक गिरीशिलामल क्व विष्णुर्मनसी नृणाम क्व च मत्सरादि दोष नहि तुहिन मयू खरिश खरश्मे पुंजे भवती हुताशन दीप्तिज प्रताप। कहाँ तो स्फटिक गिरीशिला के समान अति निर्मल भगवान विष्णु और कहाँ मनुष्यों के चित्त में रहने वाले राग द्वेष आदि दोष, इन दोनों का संयोग किसी प्रकार नहीं हो सकता। हिमकर यानी चंद्रमा के किरण जाल में अग्नि तेज की उष्णता कभी नहीं रह सकती है। विबल मतिर मत्सर प्रशांत शुचि चरितो अखिल सत्व मित्र भूत प्रिय हित वचनो अस्तमान मायो वसति सदा हृदय तस्य वासुदेव। जो व्यक्ति निर्मल चित्त मात्सर्य रहित प्रशांत शुद्ध चरित्र समस्त जीवों का सुहृद प्रिय और हितवादी तथा अभिमान एवं माया से रहित होता है, उसके हृदय में भगवान वासुदेव सर्वदा विराजमान रहते हैं। वसति हृदय सनातने च तस्मिन् भवति पुमांजगतो अस्य सौम्य रूपः खिति रस मति रम्य मात्मनो अंतः कथयति चारुतयैव शालपूतः। उन सनातन भगवान के हृदय में विराजमान होने पर पुरुष इस जगत के लिए शांत स्वरूप हो जाता है। जिस प्रकार नवीन शाल वृक्ष अपने सौंदर्य से ही भीतर भरे हुए अति सुंदर पार्थिव रस को बतला देता है, यम नियम विधूत कल्मषाणा मनुदिन मच्युत सक्त मानसानाम अपगत मदमान मत्सराणाम त्यज भट दूर तरेण मानवानाम। हे दूत, यम और नियम के द्वारा जिनकी पाप राशि दूर हो गई है, जिनका हृदय निरंतर श्री अच्युत में ही आसक्त रहता है तथा जिनमें गर्व अभिमान और मात्सर्य का लेश भी नहीं रहा है, उन मनुष्यों को तुम दूर ही से त्याग देना। यदि यदि भगवान नादे रास्ते हरे रशि शंख गदाधरो अव्ययात्मा तद घम घवे घात कर्तृभिन्नम भवती कथम सती चांधर चांधकार मरके। यदि खड्ग शंख और गदाधारी अव्यय आत्मा भगवान हरि हृदय में विराजमान हैं तो उन पापनाशक भगवान के द्वारा उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य के रहते हुए भला अंधकार कैसे ठहर सकता है। हरति पर धनम निहंति जंतून वदती तथा अनृत निष्ठुराणी यश्च अशुभ जनित दुर्मदस्य पुंसः कलुष मतेर हृदय तस्य नास्त्यनंतः। जो पुरुष दूसरों का धन हरण करता है, जीवों की हिंसा करता है तथा मिथ्या और कटु भाषण करता है, उस अशुभ कर्मोन्मत्त दुष्ट वृद्धि के हृदय में भगवान अनंत नहीं टिक सकते। न सहति पर संपदम विनिंदाम कलुष मतिह कुरुते सताम साधुः न यजति न ददाति यश्च संतम मनसी न तस्य जनार्दनो अधमस्य। जो कुमति दूसरों के वैभव को नहीं देख सकता, जो दूसरों की निंदा करता है, साधु जनों का अपकार करता है तथा संपन्न होकर भी न तो श्री विष्णु भगवान की पूजा ही करता है और न उनके भक्तों को दान ही देता है, उस अधम के हृदय में श्री जनार्दन का निवास कभी नहीं हो सकता। परम सुहृदी बांधवे कलत्रे सुत तनया पित्र मात्र भृत्य वर्गे षठमति रूपयाति यो अर्थ तृष्णाम तम धम चेष्टम वेहि नास्य भक्तम। जो दुष्ट बुद्धि अपने परम सुहृद बंधु बांधव स्त्री पुत्र कन्या माता पिता तथा भृत्य वर्ग के प्रति अर्थ तृष्णा प्रकट करता है उस पापाचारी को भगवान का भक्त मत समझो। अशुभ मति रस प्रवत्ति सक्त सतत मनार्य कुशील संगत मत्तः अनुदिन कृत पाप बंध युक्तः पुरुष पशूर नहीं वासुदेव भक्तः। जो दुर्बुद्धि पुरुष असत कर्मों में लगा रहता है, नीच पुरुषों के आचार और उन्हीं के संग में उन्मत्त रहता है तथा नित्य प्रति पापमय कर्म बंधन से ही बंधता जाता है, वह मनुष्य रूप पशु ही है, वह भगवान वासुदेव का भक्त नहीं हो सकता। सकल मिदमहं च वासुदेवः परम पुमान परमेश्वरः स एकः इतमतिरचला भवत्यन्ते हृदय गते व्रज तान्विहाय दूरात। यह सकल प्रपंच और मैं एक परम पुरुष परमेश्वर वासुदेव ही हैं। हृदय में भगवान अनंत के स्थित होने से जिनकी ऐसी स्थिर बुद्धि हो गई हो उन्हें तुम दूर ही से छोड़कर चले जाना। कमल नयन वासुदेव विष्णु धरणि धराच्युत शंख चक्रपाणे भव शरण मितीर यंती यई वे त्यज भट दूर तरेण तान पापान। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणिधर, हे अच्युत, हे शंख चक्रपाणे, आप हमें शरण दीजिए। जो लोग इस प्रकार पुकारते हों उन निष्पाप व्यक्तियों को तुम दूर से ही त्याग देना। वसति मनसि यस्य यो अव्ययात्मा पुरुष वरस्य न तस्य दृष्टिपाते तव गतिरथ वा ममास्ति चक्र प्रति हत वीर्य बलस्य सो अन्यलोक्यः। जिस पुरुष श्रेष्ठ के अंतःकरण में वे अव्ययात्मा भगवान विराजते हैं उसका जहाँ तक दृष्टिपात होता है वहाँ तक भगवान के चक्र के प्रभाव से अपने बलवीर नष्ट हो जाने के कारण तुम्हारी अथवा मेरी गति नहीं हो सकती। वह महापुरुष तो अन्य वैकुंठ आदि लोकों का पात्र है। कालिंग उवाच इति निज भट शासनाय देवो रवि तनयस्य किलाह धर्मराजः मम कथितमिदं च तेन तुभ्यं कुरुवर सम्यगिदं मयापि चोक्तम्। कालिंग बोला हे कुरुवर, अपने दूत को शिक्षा देने के लिए सूर्यपुत्र धर्मराज ने उससे इस प्रकार कहा। मुझसे यह प्रसंग उस जाति स्मर मुनि ने कहा था और मैंने यह संपूर्ण कथा तुमको सुना दी है। श्री भीष्म उवाच नकुलै तन्म माख्यातम पूर्वम तेन द्विजन्मना कलिंग देशात भेत्य प्रीतेन सुमहात्मना। श्री भीष्म जी बोले हे नकुल, पूर्व काल में कलिंग देश से आए हुए उस महात्मा ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर मुझे यह सब विषय सुनाया था। मयाप्येतद्यनाथान्यायम सम्यग वत्स तवोदितम यथा विष्णु मृते नान्यत्राणम संसार सागरे। हे वत्स, वही संपूर्ण वृत्तांत जिस प्रकार के इस संसार सागर में एक विष्णु भगवान को छोड़कर जीव का और कोई भी रक्षक नहीं है मैंने ज्यों का त्यों तुम्हें सुना दिया। किंकराह पाशदंडाश्च न यमुन च यातनाः समर्थास्तस्य यस्यात्मा केशवालंबन सदा। जिसका हृदय निरंतर भगवत परायण रहता है उसका यम, यमदूत, यमपाश, यमदंड अथवा यम यातना कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। श्री पराशर उवाच एतन मुखे समाख्यातम गीतम वैवस्वतेन यत त्वत् प्रश्नानुगतम सम्यक के मन्य श्रोतुमिच्छसी। श्री पराशर जी बोले हे मुनि, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार जो सब कुछ यम ने कहा था वह सब मैंने तुम्हें भली प्रकार सुना दिया, अब और क्या सुनना चाहते हो। इति श्री विष्णु पुराणे तृतीय अंशे यम गीता संपूर्णा। यम गीता दो। एक यम गीता अग्नि महापुराण के अंतर्गत भी प्राप्त होती है। यह गीता यमराज द्वारा नचिकेता के प्रति कही गई है। इस यम गीता की केंद्रीय विषय वस्तु योग दर्शन है। इसके प्रारंभ में प्राचीन काल के विभिन्न मनीषियों तथा पंचशिख जनक जैगीशव्य देवल आदि के मतानुसार मनुष्य के परम कल्याण के साधन बताए गए हैं। जिनके द्वारा आत्मचिंतन तथा अनासक्त भाव से शास्त्रोक्त कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। इसके बाद इसमें योग मार्ग का वर्णन है। विशेषकर यम नियम के द्वारा मन का निग्रह करते हुए समाधि अवस्था प्राप्त करने का उपाय बताया गया है, जिससे जीव ब्रह्म भाव में स्थित हो जाता है। यह सारगर्भित एवं तात्विक यम गीता यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। अग्निरोवाच यम गीतां प्रवक्ष्यामि उक्ता या नाचिकेतसे पठतां श्रणवतां भुक्त्यै मुक्त्यै मोक्षार्थिनां सतां। अग्निदेव कहते हैं, ब्रह्मन् अब मैं यम गीता का वर्णन करूँगा जो यमराज के द्वारा नचिकेता के प्रति कही गई थी। यह पढ़ने और सुनने वालों को भोग प्रदान करती है तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले सत्पुरुषों को मोक्ष देने वाली है। यम उवाच आसनम शयनम यान परिधान ग्रहादिकम वांछत्यहो अतिमोहेन सुस्थिरम स्वयं स्थिरः। यमराज ने कहा, अहो कितने आश्चर्य की बात है कि मनुष्य अत्यंत मोह के कारण स्वयं अस्थिर चित्त होकर आसन शैया वाहन परिधान तथा ग्रह आदि भोगों को सुस्थिर मानकर प्राप्त करना चाहता है। भोगेशु शक्तिः सततम् तथैवात्मावलोकनम् श्रेयः परम मनुष्याणाम् कपिलोद्गीतमेव हि। कपिल जी ने कहा है, भोगों में आसक्ति का अभाव तथा सदा ही आत्मतत्व का चिंतन, यह मनुष्यों के परम कल्याण का उपाय है। सर्वत्र समदर्शित्वं निर्ममत्वं संगता श्रेयः परम मनुष्याणाम् गीतम् पंचशिखेन हि। सर्वत्र समतापूर्ण दृष्टि तथा ममता और आसक्ति का न होना, यह मनुष्यों के परम कल्याण का साधन है। यह आचार्य पंचशिख का उद्गार है। आगर्भ जन्म बाल्यादिवयो अवस्थादि वेदनम श्रेयः परमं मनुष्याणाम गंगा विष्णु प्रगीतकम्। गर्भ से लेकर जन्म और बाल्य आदि वय तथा अवस्थाओं के स्वरूप को ठीक ठीक समझना ही मनुष्यों के परम कल्याण का हेतु है। यह गंगा विष्णु का गान है। आध्यात्मिकादि दुखानामाद्यंतादि प्रतिक्रिया श्रेयः परम मनुष्याणाम जनकोद्गीतमेव च। आध्यात्मिक आधिदैविक और आधि भौतिक दुख आदि अंत वाले हैं, अर्थात ये उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं। अतः इन्हें क्षणिक समझकर धैर्यपूर्वक सहन करना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। इस प्रकार उन दुखों का प्रतिकार ही मनुष्यों के लिए परम कल्याण का साधन है। यह महाराज जनक का मत है। अभिन्नयोर्भेदकरः प्रत्ययो यः परात्मनः तच्छान्ति परमं श्रेयो ब्रह्मोद्गीत मुदाहृतम्। जीवात्मा और परमात्मा वस्तुतः अभिन्न एक हैं। इनमें जो भेद की प्रतीति होती है उसका निवारण करना ही परम कल्याण का हेतु है। यह ब्रह्मा जी का सिद्धांत है। कर्तव्यमिति यत्कर्म रज्ञयुजा रज्ञयुसाम संगितम कुरुते श्रेयसे संगान जयगीषव्येण गीयते। जयगीषव्य का कहना है कि ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद में प्रतिपादित जो कर्म हैं उन्हें कर्तव्य समझकर अनासक्त भाव से करना श्रेय का साधन है। हानिः सर्वविदित्साना मात्मनः सुखहेतुकी श्रेयः परमं मनुष्याणां देवलोद गीतमीरितम्। सब प्रकार की विदित्सा कर्मारंभ की आकांक्षा का परित्याग आत्मा के सुख का साधन है। यही मनुष्यों के लिए परम श्रेय है। यह देवल का मत बताया गया है। काम त्यागात्तु विज्ञानम सुखम ब्रह्म परमम मद पदम कामिनाम नहि विज्ञानम सनकोद गीतमेव तत्। कामनाओं के त्याग से विज्ञान सुख ब्रह्म एवं परम पद की प्राप्ति होती है। कामना रखने वालों को ज्ञान नहीं होता, यह सनकादिकों का सिद्धांत है। प्रवर्तंच निवृत्तंच कार्यम कर्म परो अब्रवीत श्रेयसाम श्रेय एतद्धि नैष्कर्म्यम ब्रह्म तद्धरिह। दूसरे लोग कहते हैं कि प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों प्रकार के कर्म करने चाहिए, परंतु वास्तव में निष्कर्म ही ब्रह्म है, वही भगवान विष्णु का स्वरूप है, यही श्रेय का भी श्रेय है। पुमांश्चाधिगत ज्ञानो भेदम नाप्नोति सत्तमः ब्रह्मणा विष्णु संज्ञेन परमेणाव्ययेन च। जिस पुरुष को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है वह संतों में श्रेष्ठ है, वह अविनाशी परब्रह्म विष्णु से कभी भेद को नहीं प्राप्त होता। ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम सौभाग्यम रूपमुत्तमम तपसा लभ्यते सर्वं मनसा यद्यदिच्छति। ज्ञान विज्ञान आस्तिकता सौभाग्य तथा उत्तम रूप से तपस्या से उपलब्ध होते हैं। इतना ही नहीं, मनुष्य अपने मन से जो जो वस्तु पाना चाहता है वह सब तपस्या से प्राप्त हो जाती है। नास्ति विष्णु समम ध्येयम तपो नान शनात् परम नास्त्यारोग्य समम धन्यम नास्ति गंगा समासरित। विष्णु के समान कोई ध्येय नहीं है, निराहार रहने से बढ़कर कोई तपस्या नहीं है, आरोग्य के समान कोई बहुमूल्य वस्तु नहीं है और गंगा जी के तुल्य दूसरी कोई नदी नहीं है। न सो अस्ति बांधवः कश्चित् विष्णुं मुक्त्वा जगद्गुरुं अधश्चोध्वर्वं हरिश्चाग्रे देहेन्द्रिय मनोमुखे। जगद्गुरु भगवान विष्णु को छोड़कर दूसरा कोई बांधव नहीं है, नीचे ऊपर आगे देह इंद्रिय मन तथा मुख सब में और सर्वत्र भगवान श्री हरि विराजमान हैं। इत्येवं संस्मरण प्राणान यस्त्यजेत् स हरिर्भवेत् यत्तद् ब्रह्म यतः सर्वं यत्सर्वं तस्य संस्थितं अग्राह्य कम निर्देश्यं सुप्रतिष्ठञ्च यत्परं परापर स्वरूपेण विष्णुः सर्वहृदि स्थितः यज्ञेशं यज्ञपुरुषं केचिदिच्छन्ति तत्परं केचिद्विष्णुं हरं केचित् केचित् ब्रह्माणमीश्वरं इन्द्रादीनामभिः केचित् सूर्यं सोमञ्च कालकम् ब्रह्मादिस्तंभ पर्यंतम जगद विष्णु वंदती च। इस प्रकार भगवान का चिंतन करते हुए जो प्राणों का परित्याग करता है वह साक्षात श्री हरि के स्वरूप में मिल जाता है। वह जो सर्वत्र व्यापक ब्रह्म है, जिससे सबकी उत्पत्ति हुई है, जो सर्वस्वरूप है तथा यह सब कुछ जिसका संस्थान यानी आकार विशेष है, जो इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है, जिसका किसी नाम आदि के द्वारा निर्देश नहीं किया जा सकता, जो प्रतिष्ठित एवं सबसे परे है, उस परापर ब्रह्म के रूप में साक्षात भगवान विष्णु ही सबके हृदय में विराजमान हैं। वे यज्ञ के स्वामी तथा यज्ञ स्वरूप हैं। उन्हें कोई तो पर ब्रह्म रूप से प्राप्त करना चाहते हैं, कोई विष्णु रूप से, कोई शिव रूप से, कोई ब्रह्मा और ईश्वर रूप से, कोई इंद्र आदि नामों से तथा कोई सूर्य चंद्रमा और काल रूप से उन्हें पाना चाहते हैं। ब्रह्मा से लेकर कीट तक सारे जगत को विष्णु का ही स्वरूप कहते हैं। स विष्णु है परमं ब्रह्म यतो नावर्तते पुनः सुवर्णादि महादान पुण्यतीर्थावगाहनैः ध्यानैः व्रतैः पूजया च धर्मश्रुत्या तदाप्नुयात्। वे भगवान विष्णु परब्रह्म परमात्मा हैं, जिनके पास पहुंच जाने पर फिर वहां से इस संसार में नहीं लौटना पड़ता। सुवर्ण दान आदि बड़े बड़े दान तथा पुण्य तीर्थों में स्नान करने से, ध्यान लगाने से, व्रत करने से, पूजा से और धर्म की बातें सुनने से एवं उनका पालन करने से उनकी प्राप्ति होती है। आत्मानं रथनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इन्द्रियाणि हयानाहुर् विषयांश्चेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्ते याहुर् मनीषिणः। आत्मा को रथी समझो और शरीर को रथ, बुद्धि को सारथी जानो और मन को लगाम। विवेकी पुरुष इंद्रियों को घोड़े कहते हैं और विषयों को उनके मार्ग तथा शरीर इंद्रिय और मन सहित आत्मा को भोक्ता कहते हैं। यस्त्व विज्ञानवान भवत्युक्तेन मनसा सदा न सत्पदं वाप्नोति संसारं चाधिगच्छति। यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा स तत्पदं वाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते। जो बुद्धि रूप सारथी अविवेकी होता है, जो अपने मन रूपी लगान को कसकर नहीं रखता, वह उत्तम पद परमात्मा को नहीं प्राप्त होता, संसार रूपी गर्त में गिरता है। परंतु जो विवेकी होता है और मन को काबू में रखता है, वह उस परम पद को प्राप्त होता है, जिससे वह फिर जन्म नहीं लेता। विज्ञान सारथिर यस्तु मनः प्रग्रहवान नरः सो अध्वानं परमाप्नोति तद्विष्णुः परमं पदम्। जो मनुष्य विवेक युक्त बुद्धि रूप सारथी से संपन्न और मन रूपी लगाम को काबू में रखने वाला होता है, वही संसार रूपी मार्ग को पार करता है, जहाँ विष्णु का परम पद है। इंद्रियभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परमं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिः बुद्धेरात्मा महान परः, महतः परम व्यक्तं व्यक्तात् पुरुषः परः, पुरुषान्न परमं किंचित सा काष्ठा सा परा गतिः। इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय पर हैं, विषयों से परे मन हैं, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे महान आत्मा महत्तत्व है, महत्तत्व से परे अव्यक्त मूल प्रकृति है, और अव्यक्त से परे पुरुष परमात्मा है। पुरुष से परे कुछ भी नहीं है, वही सीमा है, वही परम गति है। एषु सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रयया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः यच्छेद्वांग मनसी प्राज्ञः तद्यच्छे ज्ञानमात्मनि ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेच्छान्त आत्मनि। संपूर्ण भूतों में छिपा हुआ यह आत्मा प्रकाश में नहीं आता। सूक्ष्मदर्शी पुरुष अपनी तीव्र एवं सूक्ष्म बुद्धि से ही उसे देख पाते हैं। विद्वान पुरुष वाणी को मन में और मन को विज्ञानमयी बुद्धि में लीन करें, इसी प्रकार बुद्धि को महत्तत्व में और महत्तत्व को शांत आत्मा में लीन करें। ज्ञात्वा ब्रह्मात्मो ब्रह्मात्मनोर्योगम यमाद्यैर्ब्रह्म सद्भवेत् अहिंसा सत्यमस्तेयम् ब्रह्मचर्या परिग्रही यमाश्च नियमाः पंच शौचम संतोष संतपः स्वाध्यायेश्वर पूजा च आसनम पद्मा पद्मकादिकम प्राणायामो वायुजयः प्रत्याहारः स्वनिग्रहः। यम नियम आदि साधनों से ब्रह्म और आत्मा की एकता को जानकर मनुष्य सत स्वरूप ब्रह्म ही हो जाता है। अहिंसा सत्य अस्तेय यानी चोरी का अभाव, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यानी संग्रह न करना, ये पांच यम कहलाते हैं। नियम भी पांच ही हैं, शौच यानी बाहर भीतर की पवित्रता, संतोष, उत्तम तप, स्वाध्याय और ईश्वर पूजा। आसन बैठने की प्रक्रिया का नाम है, उसके पद्मासन आदि कई भेद हैं। प्राण वायु को जीतना प्राणायाम है, इंद्रियों का निग्रह प्रत्याहार कहलाता है। शुभे ह्यकत्र विषये चेतसो यत प्रधारणम निश्चलत्वात्तु धीमद्धे धारणा द्विज कथ्यते पौनः पुण्येन तत्रैव विषयेष्वेव धारणा ध्यानम स्मृतम समाधिस्तु अहम् ब्रह्मात्म संस्थितिः। ब्रह्मन् एक शुभ विषय में जो चित्त को स्थिरता पूर्वक स्थापित करना होता है, उसे बुद्धिमान पुरुष धारणा कहते हैं। एक ही विषय में बारंबार धारणा करने का नाम ध्यान है। मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार के अनुभव में स्थिति होने को समाधि कहते हैं। घटध्वंसाद्य था काशम भिन्नम नभसा भवेत मुक्तो जीवो ब्रह्मणैव सद्ब्रह्म ब्रह्म वै भवेत आत्मानं मन्यते ब्रह्म जीवो ज्ञानेन नान्यथा जीवो ह्य ज्ञान तत्कार्य मुक्तः स्याद जरामरः। जैसे घड़ा फूट जाने पर घटाकाश महाकाश से अभिन्न एक हो जाता है, उसी प्रकार मुक्त जीव ब्रह्म के साथ एक ही भाव को प्राप्त होता है, वह सत स्वरूप ब्रह्म ही हो जाता है। ज्ञान से ही जीव अपने को ब्रह्म मानता है, अन्यथा नहीं। अज्ञान और उसके कार्यों से मुक्त होने पर जीव अजर अमर हो जाता है। अग्निरुवाच वशिष्ठ यम गीतोक्ता पठताम भुक्ति मुक्तिदा आत्यंतिको लयः प्रोक्तो वेदांत ब्रह्म धीमयः। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ यह मैंने यम गीता बतलाई है, इसे पढ़ने वालों को यह भोग और मोक्ष प्रदान करती है। वेदांत के अनुसार सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि का होना आत्यंतिक लय कहलाता है। इति श्री अग्नि महापुराणे यम गीता संपूर्णा। जय श्री राम।